दिन भर 31 अगस्त दिन शुक्रवार सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। पुलिस ने दावा किया गिरफ्तार किए गए मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का माओवादियों से रिश्ता है।
अब ये ढिंडोरा पीट के सारे देश को बता दिया कि हमारे पास ये सबूत है, सिर्फ इसीलिए कि आप खुद कटहरे में हैं और आप अपने उस कटहरे में अपने आप को जस्टिफाई कर।
भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथियों ने पुलिस वालों के परिजनों का अपहरण किया।
फैमिली मेंबर्स है वो इनोसेंट है, उनको नहीं किया जाना चाहिए इसमें, और दोनों तरफ से मुझे लगता है फैमिलीज को अलग रखना चाहिए।
और विवेचना में सुनिए मुगल शहजादी जहांआरा के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू।
वो अपने आप में एक बिल्कुल मुकम्मल शख्सियत थी। 17 साल की उम्र में जब उनकी वालदा का इंतकाल होता है मुमताज जहां का, तो वो बादशाह बेगम बन जाती हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। महाराष्ट्र पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर पीबी सिंह ने कहा है कि मंगलवार को छापेमारी के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। पुलिस ने दावा किया है कि माओवादी संगठन एक बड़ी साजिश रच रहे थे। महाराष्ट्र पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया था उन्हें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उनके घर में ही नजरबंद रखा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे हैं, मगर उनकी इस यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चीन के रास्ते यात्रा करने पर सवाल उठाए हैं, मगर कांग्रेस ने कहा है कि क्या अब महादेव के दर्शन के लिए भी प्रधानमंत्री से इजाजत लेनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उनका चीन के साथ कनेक्शन क्या है।
जहां तक प्राइवेट ट्रिप का विषय है, अगर वो किसी आस्था का विषय है उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहिए, मगर द क्वेश्चन दैट वी हैव आस्क्ड मिस्टर राहुल गांधी इज, आप चाइना जा रहे हैं, आप किन किन से मिलेंगे? आप बोल दीजिए किसी से नहीं मिलेंगे तो बोल दीजिए किसी से नहीं मिलेंगे। और ये सब जो खुलासा अभी आप लोगों ने प्रश्न पूछा, आप लोगों ने पूरा रिसर्च किया हुआ है कि चाइनीज एम्बेसडर आखिर राहुल गांधी को छोड़ना क्यों चाहते थे, इसका जवाब कौन देगा? क्यों, ऐसा क्या है? वो इंडियन सिटीजन है, ही इज नॉट चाइनीज गांधी।
आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को। भारत प्रशासित कश्मीर में अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध चरमपंथियों ने पुलिस अधिकारियों के कम से कम 10 परिजनों का अपहरण कर लिया है। इसे बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है। इससे पहले 2 चरमपंथी नेताओं के परिजनों ने सुरक्षा बलों पर उनके घर जलाने का आरोप लगाया था। भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी और सुरक्षा बल दोनों ही आमतौर पर परिजनों को निशाना नहीं बनाते। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ सम्मेलन के इंतजामों पर चर्चा के लिए अगले हफ्ते एक प्रतिनिधिमंडल को प्योंगयांग भेजेंगे। दोनों कोरिया के राष्ट्र प्रमुखों का ये सम्मेलन अगले महीने होने की उम्मीद है। ये मून और किम के बीच तीसरी मुलाकात होगी। इस सम्मेलन को लेकर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता किम यूई क्योम ने कहा, राष्ट्रपति मून जेई ने 5 सितंबर को प्योंगयांग के लिए खास प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। ये विशेष प्रतिनिधि उत्तर कोरियाई समकक्षों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि अगले अंतर कोरियाई सम्मेलन का शेड्यूल बनाने, रिश्तों को गहरा करने, परमाणु निरस्त्रीकरण और कोरियाई प्रायद्वीप में शांति की स्थापना करने पर बात हो सके। ये थे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता किम यूई क्योम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका की सबसे वरिष्ठ काउंटर इंटेलिजेंस अधिकारी ने चेताया है कि चीन की जासूसी एजेंसियां सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंटों के जरिए सरकारी और कारोबारी सूचनाएं रखने वाले अमरीकियों को निशाना बना रही हैं। विलियम इवानिना ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि बिजनेस नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन के जरिए चीन की एजेंसियां अमरीका में गुप्तचर रखने के लिए तेज अभियान चला रही हैं। लिंक्डइन के प्रवक्ता का कहना है कि उन्होंने इस सिलसिले में कानूनी एजेंसियों से बात की है और वो इस तरह की किसी भी गतिविधि को पहचानने और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने शक्तिशाली अर्धसैनिक बल हाशिद अल शाबी के प्रमुख फलीह अल फयाद को हटा दिया है, जिनकी इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका रही है। अबादी ने अल फयाद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद से भी हटा दिया है। अपने बयान में अबादी ने अल फयाद पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसकी इराकी सुरक्षा बलों से उम्मीद नहीं की जाती। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बोइको बोरिसोव ने अपने गृहमंत्री और परिवहन मंत्री को पद से हटा दिया है। यह कदम एक बस हादसे के बाद उठाया गया। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताओं को हादसे की राजनीतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोगों का मानना है कि यह हादसा देश की खराब सड़कों के कारण हुआ है। बीबीसी समाचार।
ये बी बी सी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन सकते हैं इस समय लाइव। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में इस साल की शुरुआत में हुई हिंसा के सिलसिले में 2-3 दिन पहले कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की कोशिश के बाद आज मुंबई में पुलिस ने दावे किए कि उनके पास इस बात के सबूत हैं जो बताते हैं कि जिनके घरों में छापे मारे गए उनका संबंध माओवादियों से है। पुलिस ने सबूत भी पेश किए हैं। पुलिस के दावों और उसकी कार्यशैली पर हम आगे करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुनते हैं मुंबई से बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर की जुबानी, पुलिस ने क्या कहा, किन शब्दों में कहा।
संदीप जी, आज महाराष्ट्र के जो एडिशनल डीजी है परमबीर सिंह, लॉ एंड ऑर्डर के, उन्होंने इस पूरे भीमा कोरेगांव के इशू में जो पुणे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो पूरी तफ्तीश कर रही हैं, जिन्होंने ये गिरफ्तारियां की हैं, उनके साथ मुंबई में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसा हम सब जानते हैं कि ये अरेस्ट 2 दिन पहले पुणे पुलिस करने गई थी, दिल्ली में, झारखंड में, महाराष्ट्र के मुंबई में और हैदराबाद में। तब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था और फिलहाल रिमांड ना देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनको 5 तारीख तक हाउस अरेस्ट का ऑर्डर जो है वो दिया है। तो अपना पक्ष रखने के लिए, क्योंकि पुलिस की इस पूरे कार्रवाई के ऊपर टीका हो रही थी, समीक्षा हो रही थी, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा।
एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी जिसमें माओवेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी। पूरी एविडेंस को एनालाइज कर लिया गया, उससे ये सामने आया कि सीपीआई माओवेस्ट की एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक ऑल इंडिया फ्रंट एस्टैब्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ खोलने का, एस्टैब्लिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का। पहले केओस क्रिएट किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक डाउन किया जाए और उसके द्वारा एस्टैब्लिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए।
परमवीर सिंह का ये कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत है, ये सारे जो लेटर्स हैं वो पहले उनके पास है। और उन्होंने ये कहा कि ये सारे लोग जो हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, इससे पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इसी साल जून महीने में, और उनके पास के नाम आने के बाद इन 5 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। ये सारे CPIM माओइस्ट, यानी माओइस्ट उग्रवादी जो आंदोलन है जिनको बैन किया गया, इसके मेंबर हैं और ये ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं जो शहर के अलग अलग हिस्सों में हैं और वहां पे सिंपथी जताते हैं और काम करते हैं। उन्होंने अलग अलग लेटर्स का भी जिक्र किया है।
ये एक लेटर है जो कि श्रीमती सुधा भारद्वाज ने प्रिय कॉमरेड प्रकाश को लिखा। जगदलपुर छत्तीसगढ़ लीगल एड तथा बस्तर सॉलिडेरिटी नेटवर्क, इस संगठन का काम बहुत अच्छे से चल रहा है और सक्रिय रूप से इंटीरियर के कामों में जानकारी तथा आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए इसका काम मैं स्वयं देख रही हूं।
पुलिस का ये दावा है कि ये सारे डिकोड किए गए लेटर फॉरेंसिक लैब से, क्योंकि ये एक कोड लैंग्वेज में हुआ करता था, बहुत ही तकनीकी तरह से ये मैसेज भेजा जा रहा था, लेकिन पुलिस ने सब डिकोड किया है, ऐसा दावा पुलिस का है।
एविडेंस के बाद हमने जिनके नाम ऐड किए वो श्री वरवर राव, अरुण फरेरा, वर्नन गोंजाल्वेस, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबड़े एंड एक सस्पेक्ट स्टैन स्वामी।
पुलिस ने ये भी कहा कि जो जिनके नाम इनके तफ्तीश में सामने आए हैं, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया है, जो सबूत सामने आए हैं उसकी आधार पर अरेस्ट किए गए हैं और जैसे और सबूत आएंगे आगे की कार्रवाई भी पुलिस करेगी, ऐसा परमवीर सिंह ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा।
ये थे मुंबई से बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर। मैंने अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद माजिद मेमन से बात की और जानना चाहा कि पुलिस के दावों और उसकी कार्यशैली को इस मामले में किस तरह देखा समझा जाए।
पुलिस एडीजी ने तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको माओइस्ट होने का जजमेंट भी दे दिया। उनको ये कहना चाहिए कि हमें शक है कि ये माओइस्ट एक्टिविटीज से जुड़े हैं या इनका कहीं बैकग्राउंड वहां उनसे मिलता जुलता कहीं है और हम इस सिलसिले में सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। अब आप सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ सबूत आपने इकट्ठा किया है, कुछ सबूत आपको आगे और इकट्ठा करना है, तो बजाय इसके कि इस मामले पे इतना शोर कर देते, इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए पहुंच जाते, इन सबको अरेस्ट करके आजादी पर इनका हमला कर लेते, बेहतर ये होता कि आप और सबूत इकट्ठा करते और फिर अदालत के सामने आप चार्जशीट दाखिल कर सकते थे और फिर अदालत इन लोगों पर वारंट भी निकाल सकती थी और इनको पेश करने में बुलाए भी लगती थी कोर्ट में, वो भी एक रास्ता था। लेकिन इन्होंने जिस तरह से कदम उठाया जिससे सारे देश में आक्रोश हुआ है, कुछ आरोप ऐसे भी लगे हैं कि झूठे सबूत बनाए गए हैं, तो इससे पुलिस को खामखा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा है, यही हमारा कहना है।
माजिद साहब, जिस तरह के एविडेंस सबूत पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश किए, आपको लगता है कि वो मामले में काफी हैं या जिस तरह से पेश किया गया वो दावे अपने आप में काफी लगते हैं इस पूरे मामले में कार्रवाई को जायज ठहराने के लिए?
देखिए, ऐसे सेंसिटिव मामले में पहले तो मैं टिप्पणी ये करूंगा कि पुलिस के लिए ये उचित नहीं है कि इसको पब्लिक के सामने खोल दिया जाए सारा। अगर आप तफ्तीश कॉन्फिडेंशियली नहीं करते और आप तफ्तीश की पब्लिसिटी कर देते हैं कि आपने ये सबूत इकट्ठा किया, तो इससे आप तफ्तीश के पर्पस को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये इस मुकदमे का नहीं, मैं आपसे जनरली भी कह रहा हूं कि अगर आपके पास किसी सीरियस मामले में कुछ सबूत है और उस सबूत को आपने ढंढोरा पीट के सबको बता दिया, तो उसके आगे वाले सबूत मिलने के इम्कान कम हो जाते हैं, क्योंकि मुलजिम हैं या मुलजिम के चाहने वाले हैं या मुलजिम के साथी हैं जिनको अभी तक जिन पर आपका हाथ नहीं पहुंचा, नजर नहीं पहुंची, वो उन सबूतों को मिटाने की कोशिश करेंगे। तो ये इट्स अ डिसर्विस टू ए फेयर एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन इफ यू रिवील इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए जब तक के चार्जशीट नहीं फाइल होती। आरोपी को भी और आरोपी के वकील को भी अधिकार नहीं होता कानूनी दायरे में। जब जमानत के लिए भी अर्जी हम लोग करते हैं किसी आरोपी की तरफ से, तो हमको इख्तियार नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स देख सकें या जान सकें कि क्या है सबूत। वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अपने कब्जे में होता है और ज्यादा से ज्यादा वो कोर्ट को कॉन्फिडेंशियली बताया जाता है। अब ये ढंडोरा पीट के सारे देश को बता दिया कि हमारे पास ये सबूत है सिर्फ इसीलिए कि आप खुद कटहरे में हैं और आप अपने उस कटहरे में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए सारी चीजें बता रहे हैं।
आपको ये पूरा मामला अब किस दिशा में जाता दिख रहा है जब सबूत इस तरह से ढिंडोरा पीट कर, जैसा कि आप कह रहे हैं, पुलिस ने सबके सामने रख दिए हैं?
जाहिर है इससे इम्पैक्ट तो होगा ही, निगेटिव इम्पैक्ट होगा। आपने क्यों ये तमाम चीजें खोल के रख दी? एक इतना सेंसिटिव मामला है, और ये अगर आप देशद्रोही का मामला कहते हैं या समाज की सिक्योरिटी का प्रश्न कहते हैं, तब तो उसकी गंभीरता बहुत बढ़ जाती है। और आपने तो इनको माओइस्ट कह दिया है और साथ ही साथ आपने कहा कि हमारे पास इतना सबूत है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। आप सही हैं या नहीं, इसका फैसला आप नहीं करेंगे, इसका फैसला अदालतें करेंगी।
ये थे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद माजिद मेमन। दिन भर में अब रुख कर रहे हैं भारत प्रशासित कश्मीर का, जहां पुलिस वाले सकते में हैं। सकते में इसलिए क्योंकि चरमपंथी अब पुलिस वालों के परिजनों का अपहरण कर रहे हैं। इस खबर पर और जानकारी के साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर।
दक्षिणी कश्मीर के सभी चार जिलों में पिछले 3 दिन में 10 से ज्यादा ऐसे कश्मीरियों का अपहरण हुआ है जिनके पिता, भाई या निकटतम रिश्तेदार पुलिस में कर्मचारी या अफसर हैं। बुध को बुरहानवानी के पैतृक गांव त्राल से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म आसिफ रफीक को अपने घर से अगवा किया गया। इनकी माँ और दूसरे नातेदारों ने चरमपंथियों से अपील की है कि इन्हें रिहा किया जाए। अपहरण की इन घटनाओं की निंदा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने चरमपंथियों और फोर्सेज से कहा है कि निर्दोष परिवारों को इस लड़ाई से अलग रखा जाए। पीडीपी के प्रवक्ता रफी मीर का कहना है कि अपहरण की घटनाएं असल में प्रतिक्रिया है, क्योंकि फोर्सेज कर्मचारी चरमपंथियों के परिवार वालों के साथ ज्यादतियां करते हैं।
फौज जिस वक्त एक्ट करती है, जिनके ऊपर उनकी तरफ से भी शिकायत होती है कि वो किसी मिलिटेंट फैमिली को मकानात को नुकसान पहुंचाते हैं, जान को नुकसान पहुंचाते हैं, बुजुर्गों की पिटाई होती है, वो भी कंडमनेबल है। और ये साइड जो है, इसमें जहां पुलिस वालों की फैमिलीज है, मुझे लगता है ये जो फैमिली मेंबर्स है वो इनोसेंट है, उनको नहीं किया जाना चाहिए इसमें। और दोनों तरफ से मुझे लगता है फैमिलीज को अलग रखना चाहिए।
शोपियान, पुलवामा और कुलगाम के कई नागरिकों का भी दावा है कि 2 वर्ष से लगातार पुलिस और सेना चरमपंथियों के परिवार वालों को सता रहे हैं। गौरतलब है पिछले दिनों शोपियान में चरमपंथियों ने 4 पुलिसकर्मियों की जीप पर फायरिंग की, जिसमें 4 मारे गए और हमलावर पुलिस वालों की 3 राइफलें उड़ाकर फरार हो गए। इन्हें ढूंढने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया, इसमें दर्जनों युवाओं को गिरफ्तार किया गया। हिजबुल मुजाहिदीन के सक्रिय कमांडर रियाज नायकू उर्फ मोहम्मद बिन कासिम के पिता को भी धर लिया गया। दक्षिणी कश्मीर के लोगों का आरोप है कि पुलिस पर हमले के बाद सक्रिय चरमपंथियों के घरों पर पुलिस और सेना ने धावा बोल दिया और तोड़फोड़ की। 30 वर्ष में यह पहला अवसर है कि चरमपंथियों ने स्थानीय पुलिसकर्मियों और अफसरों के रिश्तेदारों का अपहरण किया है। पुलिसकर्मियों के रिश्तेदारों में डर की लहर फैल गई है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिलाया है कि अपहरण किए गए लोगों को सुरक्षित छुड़वा लिया जाएगा। दक्षिणी कश्मीर के हालात को देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस और चरमपंथियों के बीच एक तरह का मानसिक युद्ध छिड़ गया है और इस युद्ध में चरमपंथियों और पुलिस वालों के रिश्तेदार प्रभावित हो रहे हैं। इस बीच पुलिस के महानिदेशक शीशपाल वैद ने तमाम पुलिस कर्मचारियों को छुट्टी पर जाने से मना कर दिया है। इन्हें कहा गया है कि बहुत ही मजबूरी के वक्त घर वालों को सूचित किए बगैर अचानक 2 घंटे के लिए घर जा सकते हैं। गौरतलब है जम्मू कश्मीर पुलिस 150 साल पहले डोगराशाही के दौर में आधारित हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस कोई 2 लाख कर्मचारियों पर आधारित फोर्स है जो पिछले 30 वर्ष से चरमपंथ के विरुद्ध सेना और अर्धसैनिक बलों का साथ दे रही है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
BBC इंडिया बोल।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने RSS की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की है। क्या RSS और मुस्लिम ब्रदरहुड की तुलना करना सही है? यही है इस बार BBC इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 1 सितंबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1800 102 7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
मशहूर इतिहासकार इरा मुखोटी की हाल ही में एक किताब प्रकाशित हुई है, डॉटर्स ऑफ द सन। इस किताब में उन्होंने मुगल काल की बेगमों और शहजादियों का चित्रण किया है। आज की विवेचना में रेहान फजल नजर डाल रहे हैं मुगल शहजादी जहां आरा के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं पर।
ये गीत है शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी और चहेती बेटी जहां आरा बेगम की जिंदगी पर बनी फिल्म जहां आरा का। जहां आरा बला की हसीन होने के साथ साथ विदुषी भी थी, जिन्होंने फारसी में 2 ग्रंथ भी लिखे थे। 1648 में बने नए शहर शाहजहानाबाद की 19 में से 5 इमारतें उनकी देखरेख में बनी थी। सूरत बंदरगाह से मिलने वाली पूरी आय उनके हिस्से में आती थी। उनका खुद का पानी का जहाज साहिबी था जो डच और अंग्रेजों से तिजारत करने 7 समुंदर पार जाता था। मशहूर इतिहासकार और डॉटर्स ऑफ द सन की लेखिका इरा मुखोटी बताती हैं।
जब मैंने ये रिसर्च शुरू की तो मुझे पता चला कि जिसको हम आज ओल्ड दिल्ली कहते हैं, जो शाहजहानाबाद है, उसका नक्शा जो है जहानारा बेगम ने इतने इम्पोर्टेंट वे में बनाया है। तब जहानारा ने 5 बिल्डिंगें बनाई ओल्ड दिल्ली में शाहजहानाबाद में, उनमें से सिर्फ आज चांदनी चौक रहता है। वो बहुत ही रिस्पेक्टेड बट ऑल्सो डिस्क्रीट वुमन थी, क्योंकि सभी कहते हैं चाहे दारा शिकोह या औरंगज़ेब, और इनमें तो दुश्मनी थी, मगर फिर भी जब औरंगज़ेब बादशाह बने उन्होंने जहानारा को ही वापस लाकर उनको पातशाह बेगम बनाया।
जहानारा बेगम की गिनती मुगल काल की सबसे सुसंस्कृत महिलाओं में होती थी। उनकी सालाना आय 30 लाख रुपए होती थी। आज के जमाने में इसका मूल्य 1.5 अरब रुपए के बराबर है। मुगल प्रजा भी उन पर जान छिड़कती थी। एक और मशहूर इतिहासकार राणा सफी बताती हैं।
वो एक मुकम्मल शख्सियत थी। उनको सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि वो शहजादी थी, कि या औरत थी, या शाहजहां की बेटी थी, औरंगज़ेब की बहन थी। वो अपने आप में एक बिल्कुल मुकम्मल शख्सियत थी। 17 साल की उम्र में जब उनकी वालदा का इंतकाल होता है मुमताज़ जहां का, तो वो बादशाह बेगम बन जाती हैं। और बादशाह बेगम उस वक़्त का सबसे बड़ा ओहदा था किसी औरत के लिए, कि वो हरम की चीफ है सारी औरतों की। तो जब वो बादशाह बेगम बनती हैं 17 साल की उम्र में, उसका तो किस तरह से, एक तो अपने भाई बहनों को संभालती हैं जो यतीम हो गए, दूसरे बाप को कितना सहारा देती हैं जो उस वक्त बहुत ही गमजदा थे बीवी के इंतकाल के बाद।
1644 में जहां आरा के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। जब वो किले के अंदर जा रही थीं तो उनके जामे में गलियारे में रखी मशाल से आग लग गई और उन्हें 11 महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा था। मुगल काल की कई कहानियों का विस्तृत अध्ययन करने वाले आसिफ अली देहलवी कहते हैं,
उनकी सालगिरह का मौका था और उन्होंने जो रेशमी लिबास जो पहना हुआ था, और जब वो बाहर आईं अपने खादिमाओं के साथ, तो एक शमा उनसे रश्क करने लगी उनकी खूबसूरती से और उन पर फिदा हो गई। और जब वो उनके जामे का बोसा लेना चाहती थी तो वो जो हकीर सी शमा है वो ये नहीं जानती थी कि वो शहज़ादी को कितना हर्ट करेगी, और शहज़ादी जो है वो आग के लपटों में चली गई। और जल्दी जल्दी जो है कई खादिमाओं ने उनके ऊपर कंबल वगैरह चादर वगैरह डाल के उसको बुझा दिया। वो काफ़ी हद तक जो है वो जल गई, और जब बादशाह सलामत ने उन्हें देखा तो वो बेहद परेशान हो गए। तो अलग अलग जगह से उनका जो है इलाज हुआ, और जब कभी होता ये था कि वो ठीक हो जाती थी, कभी होता था कि वे नहीं होती थी। फिर किसी ने बताया कि भाई आगरा से पहले मथुरा वृंदावन में एक जोगी है, उसकी भभूति जो वो देता है अगर उसको जख्मों पे लगा लिया जाए तो जो है वो आराम मिल जाएगा। तो उनको बुलाया गया और जो है वो लगाया गया, तो उससे आराम तो मिला, फिर से जो है जख्म जो है वो खुल जाते थे। अब किसी ने उनको, जो नजूमी था उसने बताया कि جو جہاں آرا بیگم صاحبہ ہیں انہیں کسی کی معافی کی ضرورت ہے, مطلب کسی نے بہت گندا ان کو بد دعا دی ہوئی ہے. بتایا گیا کہ ایک کوئی سپاہی تھا جو ان کی کسی خادمہ کے اوپر ڈورے ڈال رہا تھا یا غلط نظر رکھے ہوئے تھا, تو انہوں نے جو ہے اس کو ہاتھی کے پاؤں تلے مروا دیا. تو پھر سپاہی کی جو فیملی تھی اس کے بلایا گیا, اس سے معافی نامہ لکھوایا گیا, اس کو پیسہ ویسا دیا گیا. جب وہ ٹھیک ہوئیں تو بادشاہ سلامت نے خزانے کے دروازے کھول دی.
شاہجہاں کے شاسن کال میں جہاں آرا کا ایسا رتبہ تھا کہ ہر مہتوپورن فیصلے ان کی صلاح سے لیے جاتے تھے. اس زمانے میں بھارت آئے کئی پشچمی اتہاسکاروں نے اس سمے پرچلت بازار گوسپ کا ذکر کیا ہے, جس میں شاہجہاں اور ان کی بیٹی جہاں آرا کے بیچ ناجائز سمبندھوں کی بات کہی گئی ہے.
انگلش اور ویسٹرن ٹریولرز جو تھے وہ جب ہندوستان میں آتے تھے تو وہ کافی حیران ہوتے تھے جب ان کو پتا چلتا تھا کہ یہ جو بیگم ہیں وہ کتنے انفلوئنشل اور پاورفل تھے, کیونکہ اس وقت کے جو انگلش لیڈیز تھے ان کے پاس اس طرح کا آزادی ان اے وے نہیں تھا, ان کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں تھا. وہ جب شادی کرتے تھے تو ان کا سارا جو جائیداد ہوتا تھا وہ ان کے پتی کے پاس چلا جاتا تھا. تو یہ جو ٹریولرز آتے تھے ہندوستان میں ان کو لگتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بیگم جو ہے ٹریڈ کر رہی ہیں, ان کا اپنا شپ بھی ہے. تو ان کو لگتا تھا کہ اس کا کارن یہ ہے کہ کوئی غلط سمبندھ ہے شاہجہاں کے ساتھ. تو انہوں نے اس لیے لکھنا شروع کیا ہے کہ شاہجہاں کی بیٹی بہت سندر ہے, جبکہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا, اور غلط سمبندھ ہے اس لیے شاہجہاں اپنی بیٹی کو اتنا زیادہ رسپانسبلٹی اور پاور دے رہے ہیں.
فرینچ اتہاسکار فرانسوا برنیئر اپنی کتاب ٹریولز ان دی مغل امپائر میں لکھتے ہیں, جہاں آرا بہت سندر تھی اور شاہجہاں انہیں پاگلوں کی طرح پیار کرتے تھے.
جہاں آرا اپنے پتا کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ شاہی دسترخوان پر ایسا کوئی کھانا نہیں پروسا جاتا تھا جو جہاں آرا کی دیکھ ریکھ میں نہ بنا ہو. اس زمانے میں ہر جگہ چرچا تھی کہ شاہجہاں کے اپنی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. کچھ درباری تو چوری چھپے یہ کہتے سنے جاتے تھے کہ بادشاہ کو اس پیڑ سے پھل توڑنے کا پورا حق ہے جسے اس نے خود لگایا ہے.
وہیں ایک دوسرے اتہاسکار نکولاؤ منوچی اس کا پوری طرح سے کھنڈن کرتے ہیں. وہ ورنیئر کی تھیوری کو کوری گپ بتاتے ہیں, لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں آرا کے بھی پریمی تھے جو ان سے گپت روپ سے ملنے آتے تھے. رانا صفوی بھی منوچی کا سمرتھن کرتی ہیں.
صرف ایک نے دیا ہے, وہ ہیں برنیئر. برنیئر اورنگزیب کے ساتھ تھے اور انہیں دارا شکو سے بہت زیادہ خلش تھی. صرف وہی اس بات کا ذکر کرتے ہیں, اور اس وقت بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بازار گوسپ ہے, غلط ہے یہ, کیونکہ اورنگزیب کا ساتھ دے رہے تھے جو وار آف سکسیشن تھا, اور جہاں آرا دارا شکو کے ساتھ تھی اس لیے انہوں نے اس طرح کے رومرز پھیلائے.
جہاں آرا تا عمر کماری رہی, اس کے پیچھے بھی کئی ترک دیے جاتے ہیں. مثلاً ایک ترک یہ ہے کہ انہیں اپنے استر کا کوئی شخص ملا ہی نہیں.
بادشاہ ہمایوں کے زمانے تک شادیوں کا ذکر ملتا ہے, اکبر کے زمانے تک بھی کچھ ہم لوگ کو ملتا ہے, کیونکہ بادشاہ اکبر کی ایک سوتیلی بہن تھیں, ان کا بیاہ جو ہے انہوں نے کرایا تھا جو شاید اجمیر کے پاس ایک صوبہ تھا, وہاں کے حاکم تھے. یہ جو اکبر کے بہنوئی تھے انہوں نے بغاوت کر دی, تو اکبر نے بعد میں یہ اعلان کر دیا کہ کیونکہ ویسے ہی مغل شہزادوں میں اتنی آپس میں رنجشیں چلتی رہتی ہیں بادشاہ بننے کے لیے, اوپر سے اگر داماد بھی اس ہوڑ میں آ گئے تو ہم کہاں جائیں گے. باقی دوسرا ریزن یہ تھا کہ ان لوگوں کا مقام کچھ اس طریقے کا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو وہ کہاں دیں گے, بادشاہ کے مقام جیسا مقام کس کا ہوگا سامنے. جہاں آرا بیگم صاحبہ کا بھی مقام بہت بڑا تھا, تو ان کے لائق کوئی شوہر ملا ہی نہیں, پر ہاں ان کے لو افیئرس جو ہیں وہ چلے.
دارا شکو اور اورنگزیب کے بیچ اترادھیکار کی لڑائی میں انہوں نے دارا شکو کا ساتھ دیا. جب دارا شکو کی ہار ہو گئی تو وہ اورنگزیب کے پاس ایک پرستاؤ لے کر گئیں کہ مغل سلطنت کو شاہجہاں کے چار بیٹوں اور اورنگزیب کے سب سے بڑے بیٹے کے بیچ بانٹ دیا جائے, لیکن اسے اورنگزیب نے سویکار نہیں کیا. جب اورنگزیب نے شاہجہاں کو نظر بند کر آگرے کے قلعے میں رکھنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے شاہجہاں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ لیا.
جب ملکہ عالیہ ممتاز محل صاحبہ کا انتقال ہو رہا تھا تب انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑا, کیونکہ وہ سب سے بڑی تھیں, اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے تمہارے جو والد ہیں آپ ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا کبھی اور سب کا خیال رکھنا. تو ایک مرتی ہوئی ماں کی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر آپ اس کو ہسٹری کی طرح نہ لے کر اس کو ایسے ہی لیں, آج کے اس سے آپ تھوڑا کمپیئر کریں, تو اس وعدے کو انہوں نے جو ہے وہ نبھایا. اور جب اورنگزیب اور دارا شکوہ کے درمیان یہ لڑائی ہوئی تو بیگم صاحبہ نے شاہجہاں سے پوچھا بھی کہ بابا حضرت اگر آپ جو ساتھ دے رہے ہیں دارا شکوہ کا اور اورنگزیب کے خلاف, اگر دارا شکوہ کی جیت ہوتی ہے تو یہ تخت کی جیت سمجھی جائے؟ تو شاہجہاں نے ہاں کر دیا. تو بیگم صاحبہ پھر پوچھتی ہیں کہ اگر بھائی دارا ہار گئے تو کیا تخت کی اور شاہجہاں کی ہار سمجھی جائے گی؟ اس پر شاہجہاں جو ہے وہ خاموش ہو گئے. اب جب اورنگزیب انہوں نے آگرے کے قلعے پر قبضہ کیا اور جس طریقے کا ان کا رویہ تھا اپنے بابا حضرت کی طرف, جو بہت سارے بیچ میں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر دی تھی, جس کی بدولت انہیں وہ رویہ اختیار کرنا پڑا, تو اس رویے کو دیکھ کر ان کو بیگم صاحبہ کو لگا کہ میں اپنے بابا حضرت کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی. جو لڑکی تا عمر ہمیشہ اپنے بھائی دارا جی کو اور شاہجہاں کے پکش میں رہی, وہ ایک دم سے ان کے برے وقت میں انہیں چھوڑ کر دوسرے خیمے میں تو نہیں جا سکتی تھی. اور اس چیز میں اگر میں ایڈ آن کروں تو اورنگزیب جو تھا وہ بھی اتنی ہی عزت اس کی کرتا تھا جتنی دارا شکوہ اور شاہجہاں کرتے تھے.
دارا شکوہ کا ساتھ دینے کے باوجود اورنگزیب نے ستہ سنبھالتے ہی جہاں آرا بیگم کو پادشاہ بیگم کا خطاب دیا.
جب 1631 میں ممتاز محل جب گزر گئے تو ان ون انسٹنٹ ہم کہہ سکتے ہیں جہان آرا بیگم کو, وہ 17 سال کی تھی اور اچانک سے ان کو پادشاہ بیگم بنایا گیا. تو روشن آرا جو 14 سال کی تھی, انہوں نے دیکھا کہ ایک دن میں جو اس کے ساتھ ان کی بہن تھی, ہنستے کھیلتے تھے, ایک ساتھ ان کی پڑھائی چل رہی تھی, ان اپنے چھوٹے بہن اور بھائیوں کی پڑھائی کروا رہے تھے, ایک سیکنڈ میں یہ جو بہن ہے وہ ایک دم سے پادشاہ بیگم بن گئی. ان کی رسپانسبلٹی اتنی بڑھ گئی ہے, ان کے پیسے بڑھ گئے, انہوں نے ممتاز محل کا آدھا جو ویلتھ تھا ان کو ملا جہان آرا بیگم کو, تو وہ ویلدی پاورفل ریسپیکٹڈ بن گئی. جب جہان آرا واپس آئی تو ان کو ایک بہت سندر سی حویلی قلعہ کے باہر دی گئی, تو ویئر ایز روشن آرا قلعہ کے اندر زنانہ میں تھی. تو ان اے سینس ان کا جو فریڈم تھا کافی لمیٹڈ تھا کیونکہ وہ زنانہ کے اندر تھی, اور جہان آرا تو اپنے انڈیپینڈنٹ بہت ہی سندر حویلی میں تھی. تو یہ کافی ایکسٹرانری بات تھی کہ اس کے الائے ہوتے بھی میرے خیال سے اورنگزیب ڈڈنٹ ٹرسٹ روشن آرا. ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی انڈسکریشنز تھے, ان کے کوئی لفظ رہے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, بات چلتی تھی کہ ان کے لفظ تھے. جب جہان آرا مطلب آ گئے اور آگرہ سے, تو ان کو ایک دم سے پادشاہ بیگم بنایا انہوں نے.
ستمبر 1681 میں 67 سال کی عمر میں جہان آرا کا ندھن ہو گیا. ان کی مرتیو کی خبر اورنگزیب کے پاس تب پہنچی جب وہ اجمیر سے ڈیکن کے راستے میں تھے. انہوں نے جہاں آرا کی موت کا شوق بنانے کے لیے شاہی قافلے کو 3 دنوں کے لیے روک دیا. جہاں آرا کو ان کی اچھا انوسار نظام الدین اولیاء کی مزار کے بغل میں دفنایا گیا.
اورنگزیب کی زندگی میں ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے اپنی قبر جو تھی اس کے لیے زمین باقاعدہ مہیا کی تھی حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں, اور انہوں نے اس کے لیے اپنا ایک وصیت یہ کی تھی کہ میری قبر کھلی ہونی چاہیے اور پکی نہیں بننی چاہیے. بلکہ اگر ہم دیکھیں تو مغلوں میں 2 ہی قبریں جو ہیں جو اس طرح کی ہیں, ایک جہان آرا کی اور ایک اورنگزیب کی خود, کہ بہت چھوٹی سی ہیں اور بہت ہی سمپل سی قبریں ہیں دونوں, اور جو سینوٹاف نہیں ہے, صرف قبر ہے, وہ مٹی اس کی کھلی ہوئی ہے.
ریحان فضل, بی بی سی دلی.
اور آئیے اب سیدھے چلتے ہیں جکارتا, جہاں جاری ہیں ایشین گیمز جو اب اپنے سماپن کی اور بڑھ رہے ہیں. جکارتا میں موجود ہیں کھیل پترکار امن پریت سنگھ. امن, بتائیں بھارت اور جاپان کا مقابلہ ہاکی میں کس کون کس پر بھاری پڑتا نظر آ رہا ہے, یا نتیجہ آ گیا ہے؟
یہ میچ ابھی ابھی ختم ہوا ہے اور 20 سال کے بعد ایشیائی کھیلوں کے فائنل میں کھیل رہی بھارتی ٹیم جاپان سے 1-2 سے ہار گئی ہے. جاپان کی ٹیم پہلے ہی اولمپک میں, کیونکہ وہ ہوسٹ کر رہے ہیں اگلی گیمز, ان کا وہاں پر ستھان نشچت ہے, لیکن بھارت کو یہ میچ جیت کر کے وہاں اپنا ستھان بنانا تھا, لیکن بھارتیہ ٹیم کی باڈی لینگویج میں کوئی وشواس نہیں نظر آ رہا تھا اور کوئی ارجنسی نہیں دکھائی. جاپان میں جیت کی زیادہ للک دکھی اور انہوں نے یہ میچ 2-1 سے جیت لیا.
अमनप्रीत जल्दी से बताएं कि कल कोई और मुकाबला है जिस पे ध्यान होगा हमारा।
जी बिल्कुल, आज तो जोशना चिनप्पा ने कमाल किया, 8 बार की चैंपियन है निकोल डेविड, स्क्वाश में उनको हराया और भारत की जीत में बहुत अहम भूमिका निभाई। भारतीय टीम अब महिलाओं के स्क्वाश के मुकाबले में फाइनल में आ गया है, कल ये फाइनल होगा और कल बॉक्सिंग में भी अमित।
खेल पत्रकार अमनप्रीत सिंह बहुत शुक्रिया जकार्ता से, वक्त कम है दिन भर में, आज इतना ही, समापन के लिए हम जाएंगे अब, इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि।